अध्याय एक प्रथम रश्मि। छायावाद का आरंभ सामान्यतः 1920 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं से पता चलता है कि 1920 तक छायावाद संज्ञा का प्रचलन हो चुका था। मुकुटधर पांडे ने 1920 की जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर की श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से चार निबंधों की एक लेखमाला छपवाई थी। जब तक किसी प्राचीनतर सामग्री का पता नहीं चलता, इसी को छायावाद संबंधी सर्वप्रथम निबंध कहा जा सकता है। हिंदी में इसका नितांत अभाव देखकर मुकुटधर जी ने इधर उधर की कुछ टीका टिप्पणियों के सहारे वह निबंध प्रस्तुत किया था। इससे स्पष्ट है कि उस निबंध से पहले भी छायावाद पर कुछ टीका टिप्पणियाँ हो चुकी थी। लेखमाला के प्रथम निबंध कवि स्वातंत्र में मुकुटधर जी ने रीति ग्रंथों की परतंत्रता से मुक्त होकर कविता में व्यक्तित्व तथा भाव, भाषा, छंद, प्रकाशन रीति आदि में मौलिकता की आवश्यकता पर जोर दिया है। दूसरा निबंध छायावाद क्या है सबसे महत्वपूर्ण है। आरंभ में ही लेखक कहता है, इनोटेड कॉमा, अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति भी कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। इनोटेड कॉमा बंद। फिर भी छायावाद, इनोटेड कॉमा, एक ऐसी मायामय सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक ठाक वर्णन करना असंभव है। इनोटेड कॉमा बंद। क्योंकि इनोटेड कॉमा, ऐसी रचनाओं में शब्द अपने स्वाभाविक मूल्य को खोकर सांकेतिक चिन्ह मात्र हुआ करते हैं। इनोटेड कॉमा बंद। इनोटेड कॉमा, छायावाद के कवि वस्तुओं को असाधारण दृष्टि से देखते हैं। उनकी रचना की संपूर्ण विशेषताएं उनकी इस दृष्टि पर ही अवलंबित रहती हैं। वह क्षण भर में बिजली की तरह वस्तु को स्पर्श करती हुई निकल जाती है। अस्थिरता और क्षीणता के साथ उसमें एक तरह की विचित्र उन्मादकता और अंतरंगता होती है, जिसके कारण वस्तु उसके प्रकृत रूप में नहीं किंतु एक अन्य रूप में दिख पड़ती है। उसके इस अन्य रूप का संबंध कवि के अंतर जगत से रहता है। यह अंतर जगत दृष्टि ही छायावाद की विचित्र प्रकाशन रीति का मूल है। इनोटेड कॉमा। इस प्रकार मुकुटधर जी की सूक्ष्म दृष्टि ने छायावाद की मूल भावना आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि को पहचान लिया था। जब उन्होंने कहा कि, इनोटेड कॉमा, चित्र दृश्य वस्तु की आत्मा का ही उतारा जाता है, नोट कॉमा बंद, तो छायावाद की मौलिक विशेषता की ओर संकेत किया। छायावादी कवियों की कल्पना प्रियता पर प्रकाश डालते हुए मुकुटधर जी कहते हैं, नोट कॉमा, उनकी कविता देवी की आंखें सदैव ऊपर की ओर उठी रहती हैं। मर्त्य लोक से उसका बहुत कम संबंध रहता है। वह बुद्धि और ज्ञान की सामर्थ्य सीमा को अतिक्रम करके मन प्राण के अतीत लोक में ही विचरण करती रहती हैं। इनवर्टेड कॉमा बंद। इनवर्टेड कॉमा, यही छायावादिता से आध्यात्मिकता तथा धर्म भावुकता का मेल होता है। यथार्थ में उसके जीवन के ये दो मुख्य अवलंब है। इनवर्टेड कॉमा बंद। छायावाद में प्रकृति का उपयोग प्रायः प्रतीक की तरह होता है। इस तत्व की ओर संकेत करते हुए मुकुटधर जी कहते हैं कि, इनवर्टेड कॉमा, प्रकृति दृश्य और घटनाएं सांकेतिक रूप से अदृश्य तथा अव्यक्त के प्रकाशन में सहाय्य पहुंचाती हैं। इनोटेड कॉमा बंद। छायावाद के कला पक्ष पर विचार करते हुए मुकुटधर जी, इनोटेड कॉमा, काव्य में चित्रकारी और संगीत का अपूर्व एकीकरण, इनोटेड कॉमा बंद, उसका आदर्श मानते हैं। लेखमाला के शेष दो निबंधों का एक ही शीर्षक है, हिंदी में छायावाद। इनमें छायावाद पर लगाए गए अस्पष्टता आदि आरोपों का स्पष्टीकरण करते हुए अंत में श्री मुकुटधर पांडे ने लिखा है, इनवर्टेड कॉमा, छायावाद की आवश्यकता हम इसीलिए समझते हैं कि उससे कवियों को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग मिलेगा। इस प्रकार के अनेक मार्गों, अनेक रीतियों का होना ही उन्नत साहित्य का लक्षण है। इनवर्टेड कॉमा। मुकुटधर पांडे के इस निबंध की विस्तृत चर्चा इसलिए की गई है कि यह छायावाद पर पहला निबंध होने के साथ ही अत्यंत सूझबूझ भरी गंभीर समीक्षा भी है। इस निबंध का ऐतिहासिक महत्व ही नहीं बल्कि स्थायी महत्व भी है। उस युग की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में छायावाद का सर्वप्रथम उल्लेख जून 1921 के अंक में मिलता है, किन्हें सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक एक संवादात्मक निबंध लिखा है। संवाद में भाग लेने वाले कुल चार व्यक्ति हैं, ब्रह्म कन्या विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त सुशीला देवी, उनके हर्षिक किंतु लक्ष्मी के कृपा पात्र पति हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी और कवि सम्राट पंत जी। पहले केवल प्रथम तीन व्यक्तियों में जोशी जी के एक छायाचित्र पर बातचीत होती है, जिसे उन्होंने पंत जी की एक कविता के आधार पर बनाया है। चित्र के नाम पर बढ़िया फ्रेम में मढ़ा कोरा कागज है और उसके नीचे लिखा है छाया। हरकिशोर बाबू के अनुसार वह निर्मल ब्रह्म की विषव छाया है। स्वयं जोशी जी ने भी उसमें किसी प्रकार अनंत की स्पष्टता को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। अंत में पंत जी आते हैं और वे भी कविता के नाम पर एक कोरा कागज प्रस्तुत करते हैं, जिसका आधार जोशी जी का वही चित्र है। हरकिशोर बाबू के शब्दों में नमट कामा, यह तो वाणी की निरवता है, निस्तब्धता का उच्छ्वास है, प्रतिभा का विलास है और अनंत का विलास है। नोटेड कॉमन। कवि सम्राट अपने वक्तव्य में कहते हैं, नोटेड कॉमा, छायावाद का प्रधान गुण है अस्पष्टता। भाव इतने स्पष्ट हो जाएं कि वे कल्पना के अनंत गर्भ में लीन हो जाएं। मेरी यह सम्मति है कि शब्द अक्षरों से बनते हैं और अक्षर अविनाशी हैं। वह तो अज्ञेय है, अनंत है, अतएव हमें भाषा को वह रूप देना चाहिए जिससे वह नीरव हो जाए। वह कर्ण श्रुत न होकर हृदय गम्य हो, इंद्रिय गोचर न होकर आत्मा से ग्राह्य हो। इनोटेड कॉमन। इस व्यंग्यात्मक निबंध से एक और बात सामने आती है कि उस समय के लोग छायावाद की कविता को टैगोर स्कूल के छायाचित्रों के साथ रखकर देखते थे। यहाँ भी अभिव्यक्ति की अस्पष्टता को ही लेकर व्यंग किया गया। इस तरह इन कविताओं के लिए हिंदी छायावाद और अंग्रेजी मिस्टिसिज्म शब्द चल पड़े और इन दोनों में भी हिंदी छायावाद अधिक प्रचलित हुआ। परंतु जैसा कि सुकवि किंकर आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने कि मई 1927 ईस्वी की सरस्वती में प्रकाशित आजकल के हिंदी कवि और कविता शीर्षक निबंध से पता चलता है, छायावाद और मिस्टिसिज्म पर्याय नहीं समझे जाते थे। आचार्य की समझ में नहीं आता था कि इन कविताओं को मिस्टिसिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित के त्रैभाषिक कोष के अनुसार मिस्टिक का अर्थ होता है गूढ़ार्थ, गुह्य, गुप्त, गोप्य, रहस्य आदि। इधर इन कविताओं में आचार्य द्विवेदी को आध्यात्मिक रहस्य दिखाई ही नहीं पड़ता था। रविन्द्रनाथ की कविताओं में तो वे आध्यात्मिक रहस्य मान लेते थे, परंतु हिंदी कवियों के प्रति वे शंकालु थे। इसलिए उनके अनुसार पंत, पांडे आदि की कविताएं छायावादी ही थी। छायावाद का अर्थ ठीक ठीक न समझते हुए भी वे उन कविताओं को छायावादी मानते थे। कहते हैं, नोटेड कॉमा, छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। नोटेड कॉमा बंद। उनके विचार से अन्योक्ति पद्धति ही छायावाद है। इस तरह आचार्य इन कविताओं और छायावाद संज्ञा में संबंध स्थापित करके दोनों में निहित अर्थ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान देने की बात है कि आचार्य द्विवेदी ने रहस्य शब्द को तो ऊपर किया, परंतु रहस्यवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। लगभग 2 साल बाद 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य में रहस्यवाद निबंध पुस्तकाकार निकला, जिससे पता चलता है कि रहस्यवाद शब्द का प्रचलन पहले से हो चुका था। पंत का पल्लव तब तक निकल गया था। शुक्ल जी के निबंध से पता चलता है कि उनका ध्यान मुख्यतः पंत जी की उन कविताओं पर केंद्रित था जिसमें रहस्य के प्रति प्रायः जिज्ञासा और कहीं कहीं लालसा व्यक्त की गई थी। उनके अनुसार अज्ञात के प्रति जिज्ञासा ही सच्ची रहस्य भावना है। परंतु उन्होंने देखा कि छायावादी कवि उस जिज्ञासा को आध्यात्मिकता का रूप दे रहे हैं, इसलिए छायावादी रहस्य भावना को उन्होंने सांप्रदायिक अथवा आध्यात्मिक रहस्यवाद समझ लिया। उन्हें छायावाद की इस आध्यात्मिकता का मूल स्रोत रविंद्रनाथ में दिखाई पड़ा, और चूंकि रविंद्रनाथ ब्राह्म और थे और ब्राह्मणों का मत ईसाई धर्म से ज़्यादा मिलता था, इसलिए शुक्ल जी ने इन सब में एक तरह का बादरायण संबंध स्थापित कर लिया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते कि ईसाई धर्म की ही आध्यात्मिकता ब्राह्म माध्यम से हिंदी कविता में व्यक्त हो रही है। जब मूल भाव की एक सूत्रता स्थापित हो गई तो उन्होंने छायावाद नाम के साथ ही उसका मेल मिला दिया। बुद्धि हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। उन्हें ईसाई मत में छाया अर्थ देने वाला एक फैंटास्मेटा शब्द भी मिल गया, बस फिर क्या था। उन्होंने छायावाद शब्द को उससे जोड़ दिया और साबित कर दिया कि छायावाद नाम और भावधारा दोनों दृष्टियों से यूरोप का प्रभाव है। जिस तरह उन्होंने यूरोपीय और हिंदी आध्यात्मिकता के बीच में बंगला को माध्यम माना, उसी तरह उन्होंने हिंदी छायावाद और ईसाई फैंटास्मेटा के बीच की बंगला कड़ी की भी कल्पना कर डाली और कह चले कि बंगला में भी इन कविताओं को छायावाद कहते थे। बंगला में छायावाद नामक कोई वाद या शब्द है या नहीं, इसकी छानबीन करना उनका प्रयोजन न था। इन्हों तो अपनी बात रखनी थी, रख दी, गलत हो चाहे सही। यह प्रवाद की बंगला में भी छायावाद नामक एक वाद है, बहुत दिनों बाद हृदय प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्मूल हुआ। तात्पर्य यह कि शुक्ल जी ने छायावाद की केवल आध्यात्मिक कविताओं को अपने दृष्टिपथ में रखा है और इसीलिए छायावाद को छायावादी कविताओं की विषय वस्तु कहा। इसलिए रहस्यवाद को छायावादी कविताओं की विषय वस्तु कहा। उनका यह विचार अंत तक बना रहा। शेष को वह शैली मात्र मानते थे। जिस तरह आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी छायावाद को अन्योक्ति पद्धति समझते थे, उसी तरह आचार्य शुक्ल भी उसे शैली मानते थे, जिसमें अन्योक्ति के अतिरिक्त भी कई प्रकार की शैलियों का समावेश था। आगे चलकर आलोचकों ने शुक्ल जी द्वारा प्रवर्तित इस द्वैतवाद को समाप्त करते हुए स्थापित किया कि भाव के क्षेत्र में जो रहस्यवाद है, वही शैली में लाक्षणिक वक्रता, अन्योक्ति विधान और प्रस्तुत योजना आदि रूपों में व्यक्त होता है। इस तरह इन्होंने रहस्यवादी विषय और लाक्षणिक शैली दोनों को एक कर दिया। इस समन्वित रूप को प्रसाद जी ने रहस्यवाद नाम दिया और नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद। वाजपेयी जी का भी छायावाद आध्यात्मिक ही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक पुस्तक के महादेवी वर्मा शीर्षक निबंध में छायावाद की परिभाषा करते हुए वे कहते हैं कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। वाजपेयी जी की आध्यात्मिक छाया शुक्ल जी का फैंटास्मेटा अथवा छायावास ही है, केवल इस अंतर के साथ कि उसमें धार्मिक स्थूलता नहीं है। अपने को इस परिभाषा में बांध कर वाजपेयी जी ने प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी की बहुत सी कविताओं को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी परिभाषा का निर्माण छायावादी कवियों की केवल एक तरह की कविताओं के आधार पर किया। वाजपेयी जी की इस परिभाषा के पीछे शांतिप्रिय द्विवेदी, महादेवी वर्मा, नगेंद्र आदि की प्रचलित धारणा भी है कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद में निस्संदेह सूक्ष्मता काफी है, लेकिन इस सूक्ष्मता की सीमा के कारण हम निराला और प्रसाद की उन कविताओं से वंचित रह जाते हैं जिसमें अतीव महासंता है। इसलिए इस परिभाषा में स्पष्ट ही अव्याप्ति दोष है। जो हो, इन तमाम बातों से मालूम होता है कि शुरू शुरू में जिस अस्पष्टता के लिए छायावाद शब्द चलाया गया, वही थोड़ा नाम बदलकर मुकुटधर पांडे और आचार्य शुक्ल से होती हुई नंदुलारे वाजपेयी और नगेंद्र तक आई और अब भी अनेक विद्यार्थियों का संस्कार बन गई है। सुशील कुमार की अस्पष्टता, मुकुटधर की आध्यात्मिकता, आचार्य द्विवेदी का रहस्य, शुक्ल जी का आध्यात्मिक छायाभास, वाजपेयी जी का आध्यात्मिक छाया का भान और नगेंद्र का स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, सब एक से चिंतन क्रम में है। छायावादी कविताओं की आलोचना प्रत्यालोचना के सिलसिले में जिस समय अंग्रेजी का मिस्टिसिज्म शब्द आया, उसके कुछ दिन बाद ही रोमांटिसिज्म शब्द आ गया। शुक्ल जी ने इसका हिंदी अनुवाद स्वच्छंदतावाद किया और श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी को आदि को स्वच्छंदतावादी कवि कहा। इस तरह शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद और छायावाद में अंतर किया। वे छायावाद को रोमांटिसिज्म कहने के पक्ष में नहीं थे। आश्चर्य की बात है कि प्रसाद पंत निराला को शैली इत्यादि से प्रभावित मानते हुए भी शुक्ल जी उन्हें रोमांटिक मानने से इनकार करते थे। परंतु यहाँ भी शुक्ल जी का द्वैतवाद न चल सका। कवि आलोचक और सामान्य पाठक छायावाद को रोमांटिसिज्म का पर्याय समझने लगे। कुछ लोग शुक्ल जी द्वारा गढ़े हुए स्वच्छंदतावाद को भी छायावाद का पर्याय अथवा अंग मानने लगे तथा अन्य लोग छायावाद को स्वच्छंदतावाद का द्वितीय उत्थान कहना अधिक युक्त संगत मान चले। इस तरह प्रसाद निराला पंत तथा महादेवी की कविताओं की चर्चा के सिलसिले में अंग्रेजी की मिस्टिसिज्म और रोमांटिसिज्म तथा हिंदी के रहस्यवाद छायावाद और स्वच्छंदतावाद शब्द आए। व्यवहार में रहस्यवाद मिस्टिसिज्म का पर्याय हो गया है और छायावाद तथा स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म के। जहाँ तक रहस्यवाद छायावाद और स्वच्छंदतावाद शब्दों के शब्दार्थ और लोक प्रचलित भाव का संबंध है, इन तीनों में निस्संदेह थोड़ा थोड़ा अंतर है। रहस्यवाद अज्ञात की जिज्ञासा है तो छायावाद चित्रण की सूक्ष्मता और स्वच्छंदतावाद प्राचीन रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा। परंतु जब युग विशेष की काव्यधारा के संबंध में इन शब्दों पर विचार किया जाता है तो रहस्यवाद छायावाद और स्वच्छंदतावाद तीनों एक ही काव्यधारा की विविध प्रवृत्तियां मालूम होती हैं। वस्तुतः ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जिनमें एक ही जगह रहस्यवाद छायावाद और स्वच्छंदतावाद तीनों हैं। उदाहरण स्वरूप पंत के मौन निमंत्रण को ले, इसमें अज्ञात की जिज्ञासा होने के कारण रहस्यवाद है, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता के कारण छायावाद है और कल्पना लोक में स्वच्छंद विचरण करने के कारण स्वच्छंदतावाद भी है। जब एक कविता में इन तीनों वादों अथवा प्रवृत्तियों का अलगाना कठिन है तो पूरी काव्यधारा की क्या बात। इसलिए उचित तो यही मालूम होता है कि जिस तरह अन्य साहित्यों में अनेक प्रवृत्तियों के पुंज रोमांटिक काव्य को एक संज्ञा रोमांटिसिज्म दी गई है, उसी तरह अनेक प्रवृत्तियों के पुंज छायावादी काव्य को भी एक ही नाम देना चाहिए। कहना न होगा कि यह एक नाम छायावाद ही हो सकता है। छायावाद का सबसे पुराना होने के साथ ही प्रसाद निराला पंत और महादेवी की कविता के लिए तो रूढ़ भी हो गया है। ऐसी हालत में छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह प्रसाद निराला पंत महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो 1918 से 1936 के बीच लिखी गई। छायावाद की मनभानी परिभाषा करने की अपेक्षा उसके ऐतिहासिक और व्यावहारिक अर्थ को स्वीकार करना अधिक वैज्ञानिक है। अपनी परिभाषा को भी पहले ही से संकुचित करके फिर यह निर्णय देना कि पंत शुद्ध छायावादी हैं और दूसरे नहीं अथवा महादेवी शुद्ध छायावादी हैं अन्य नहीं, अपनी सीमा प्रदर्शित करना है। अपनी संकुचित परिभाषा के ही कारण कुछ लोग पंत की रचनाओं में भी केवल पल्लव और पल्लव के ही कुछ एक कविताओं को ही छायावाद के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। इस तरह की बातें आत्मनिष्ठ दृष्टि का परिणाम है। वस्तुतः छायावादी कविताओं की परिभाषा का निश्चय उन कविताओं में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर होना चाहिए। और यहाँ हमें यह न भूलना चाहिए कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस जागरण में जिस तरह क्रमशः विकास होता गया, उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और इसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तार होता गया। छायावाद नामकरण जिन कविताओं के आधार पर हुआ था, वैसी ही कविताएं अगले वर्षों में भी नहीं होती रही, बल्कि उनकी विषय वस्तु तथा रूप विन्यास का विस्तार हुआ। इसलिए छायावाद के आरंभिक अर्थ में भी क्रमशः व्यापकता का आना स्वाभाविक है।